अरुणिमा के घर में सब लोग एक साथ बैठकर शादी की डेट फाइनल कर रहे थे। वे शादी की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि आस्तिक ने कहा था कि शादी बहुत ही सिंपल तरीके से होगी, लेकिन फिर भी रस्में कैसे और किस तरीके से होंगी, यही सारी बातें मिलकर सब डिसाइड कर रहे थे। वहां पर सब लोग मौजूद थे, लेकिन सिर्फ आस्तिक और अरुणिमा ही थे जो वहां होकर भी वहां नहीं थे। अरुणिमा अपनी साड़ी के आंचल के कोने को अपने हाथों में लेकर उसे मरोड़ रही थी। उसका दिमाग इस समय किसी दूसरी दुनिया में ही गुम था। वहीं आस्तिक की सर्द निगाहें इस वक्त अरुणिमा को ही घूर रही थीं। वो अरुणिमा की हर एक हरकत अब्सॉर्ब कर रहा था। तभी शारदा जी अरुणिमा से बोली, अरु जाओ राजा साहब को अपना कमरा दिखा दो। दरअसल शारदा जी अरुणिमा और आस्तिक को अकेले में बात करने का मौका देना चाहती थीं। अरुणिमा हैरानी से अपनी माँ को देखने लगी और बोली, वो मेरा कमरा देखकर क्या करेंगे, मेरा कमरा इतना खास भी नहीं है। लेकिन आस्तिक अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, लेकिन मुझे देखना है। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखते रह गई। वो इतनी आसानी से कैसे मान गया, मतलब इस आदमी को समझना एक मुश्किल पहेली है। वो एक पल में कुछ और रहता है और दूसरे ही पल कुछ और हो जाता है। अरुणिमा धीरे से खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ चल दी। आस्तिक भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अरुणिमा को एहसास हुआ कि वो तो आस्तिक के सीने तक भी नहीं आ रही थी। आस्तिक की कदकाठी लंबी चौड़ी और सुडौल थी और अरुणिमा उसके सामने चूहिया सी नजर आ रही थी। ये तो वही कहावत हो गई, शेर के मुंह में चूहिया। लिविंग रूम से लेकर कमरे तक पहुंचने में आस्तिक की नज़र एक मिनट भी अरुणिमा के ऊपर से नहीं हटी। अरुणिमा आस्तिक को लेकर जैसे ही कमरे में पहुंची ही थी कि आस्तिक ने बिना समय गवाए तुरंत कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और लॉक लगा दिया। अरुणिमा एक पल के लिए चौंक गई और पलटकर आस्तिक को देखने लगी। वहीं आस्तिक भी अरुणिमा को देखने लगा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्य की मुस्कान थी। अरुणिमा को कुछ समझ नहीं आया, आस्तिक ने दरवाज़ा क्यों लगा दिया। वो तो अभी भी हैरानी से आस्तिक को देखे ही जा रही थी। आस्तिक अरुणिमा के पास आने लगा, जिससे उसे घबराहट होने लगी। वो जैसे जैसे उसके करीब आ रहा था, उससे उसे घबराहट होने लगी। वहीं जैसे जैसे आस्तिक के कदम उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे, उसके अंदर की घबराहट और बढ़ती जा रही थी। आस्तिक अरुणिमा के बिल्कुल पास आकर उसके गालों पर अपना हाथ रख दिया, जिससे अरुणिमा के पूरे शरीर में बिजली के झटके लगे। अरुणिमा का पूरा चेहरा डर से भर गया था। अरुणिमा अपने डर से पीले पड़े चेहरे के साथ आस्तिक को देख रही थी और आस्तिक की गहरी निगाहें अरुणिमा को सर से लेकर पांव तक निहार रही थीं। उसकी आंखों में कुछ था, ये प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये नफरत भी नहीं थी। अरुणिमा को आस्तिक की निगाहें ऐसी महसूस हो रही थीं जैसे कि वो उसे निगाहों से ही कच्चा खा जाएगा। आस्तिक धीरे धीरे अपने हाथ के अंगूठे को अरुणिमा के होठों पर लाते हुए उसे सहलाने लगा। हालांकि आस्तिक और अरुणिमा की शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी अरुणिमा के लिए ये स्पर्श अनकंफर्टेबल था। अरुणिमा घबराहट से दो कदम पीछे होने लगी, लेकिन आस्तिक बिना किसी वार्निंग के अरुणिमा की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है। आस्तिक ने अरुणिमा को अपनी बाहों में ले लिया। वहीं अरुणिमा उसकी बाहों से बाहर निकलने के लिए मचल रही थी। अरुणिमा को इस तरीके से स्ट्रगल करता देख आस्तिक के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वो धीरे से अरुणिमा के चेहरे की तरफ झुकने लगा। वहीं अरुणिमा अपना चेहरा पीछे की तरफ ले जाने लगी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था कि कहीं आस्तिक कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। तभी आस्तिक अरुणिमा के कानों के पास आया और उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो और मुझे यकीन है कि तुम साड़ी के बिना भी बहुत खूबसूरत हो। अरुणिमा स्तब्ध खड़ी रह गई। आस्तिक के कहने का मतलब क्या था? वो क्या कहना चाहता था कि वो इस साड़ी के बिना भी खूबसूरत है? इसका क्या मतलब हो सकता है? लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो क्या बोलना चाह रहा है, वो अपने मन में बोली, नहीं, ये आदमी पूरा पागल है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मैं माँ को सब बता दूंगी कि इसने कमरे में आने के बाद क्या किया है। मैं इससे शादी कभी नहीं करूंगी। ये आदमी साइको है। अरुणिमा यही सब सोच रही थी कि तभी आस्तिक ने अचानक से अरुणिमा को अपनी बाहों के घेरे से झटके से आजाद कर दिया, जैसे कि वो कोई कचरा हो। अरुणिमा सीधे जमीन पर जा गिरी। आस्तिक जब अरुणिमा को ऐसे जमीन पर गिरा हुआ देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अरुणिमा उसके जूते के पास गिरी थी। वहीं आस्तिक उसे इसी तरीके से गिरा हुआ छोड़कर दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अरुणिमा फर्श पर बैठे हुए अपने हाथ के बल खड़ी हो गई। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी कमर पर भी चोट लगी थी। अरुणिमा हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगी। आस्तिक वहां से जा चुका था और अरुणिमा को उससे ये पूछने का भी मौका नहीं मिला कि आखिर वो उससे शादी क्यों करना चाहता है। सब लोग जा चुके थे, लेकिन अरुणिमा अभी भी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने साड़ी उतार दी थी और अब उसने घर के कपड़े पहने हुए थे। वो बेड पर बैठी थी और अपने हाथों से चूड़ियां उतार रही थी, लेकिन एक एक चूड़ी हाथों से निकलने के साथ साथ उसे आस्तिक का व्यवहार भी याद आ रहा था। अरुणिमा इस समय बहुत ज्यादा तनाव में थी। वो बस इस समय राजा साहब के बारे में सोच रही थी। उनकी बातें, उनके बात करने का अंदाज, उनकी आभा, उनकी वो खतरनाक पर्सनालिटी, इन सबको याद करके अरुणिमा ने मन बना लिया था कि वो राजा साहब से शादी नहीं करेगी। लेकिन दूसरी तरफ उसमें ये हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अपनी माँ से भी जाकर बात करे। अरुणिमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी माँ से जाकर इस बारे में कैसे बात करे, वो कैसे बताए कि आज राजा साहब ने क्या किया है। अरुणिमा परेशान हो गई थी। वो बेड पर बैठी हुई इसी बारे में सोच रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। वो बेड से खड़ी होती है और हिम्मत जुटाते हुए खुद से बोली, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे माँ से बारे में बात करनी ही होगी। उसके बाद अरुणिमा दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर चली जाती है और सीधे अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही अरुणिमा अपनी माँ के कमरे में पहुंची, शारदा जी कमरे में मौजूद नहीं थी। उन्हें वहां ना पाकर अरुणिमा परेशान हो जाती है। आखिर इस वक्त शारदा जी कहां जा सकती हैं?